ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है कि बाप किस लिए आए हैं। बाबा ने कहा, मैं आया हूं तुम बच्चों को माला माल करने के लिए। बच्चों को इतना धन दिया था, कहां गवा दिया, फिर से आकर के मैं बच्चों को माला माल करता हूं। दूसरी बात बाबा ने कही कि ईश्वरीय मत देता हूं, जिस मत से तुम बच्चे अपने घर चले जाते हो, फिर दैवी मत से तुम बच्चे सच्चों के अंदर बहुत सुख पाते हो। बाबा ने फिर याद दिलाया कि बच्चों को क्या करना है कि अपना सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को बताना है। मानो किसी को कोई बीमारी है, अगर वो डॉक्टर को क्लियर नहीं बताता है, सर्जन को नहीं बताता है, तो उसका इलाज नहीं हो सकता है ठीक ढंग से। तो बाबा ने कहा, कोई भी बीमारी है, बाप सर्जन बैठा है, वो बाप को बताओ, बाप राय भी देंगे, उसको ठीक भी करा देंगे। योग के चार्ट के ऊपर बाबा ने खास बताया कि योग का चार्ट ऐसा है कि कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई मुश्किल से 15 मिनट ही कर पाते हैं, नहीं तो बुद्धि इधर उधर घूमती रहती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यार भी किया है, और प्यार के साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कैसे बाबा बच्चों को माला माल करते हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2024, मुरली का मुख्य हेडी, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति प्रसारित कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति प्रसारित कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? इसका उत्तर है, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। ईश्वरीय मत से अपने घर जाते हैं, नई दुनिया में ऊंच पद पाते हैं। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि दैवी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते हो। दैवी मत से हम सुख तो पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर नीचे भी उतरते हैं, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है, ईश्वर मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ईश्वर मत को कैसे फॉलो कर सकते हैं? जब बाबा पर निश्चय है, तब तो ईश्वर मत को भी फॉलो कर सकते हैं। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। फिर जब ऑडियंस मिलते हैं तब टॉकी बनते, जब आत्मा अपने घर में ऑडियंस नहीं है तो शांति में है, ऑडियंस मिले तो फिर टॉकी हो जाती है, फिर जब ऑडियंस मिलते हैं तब टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑडियंस होते हैं, फिर बड़े होते हैं, छोटा बच्चा होगा कितना उसके छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी बातें करता है, बड़ा हुआ तो फिर बड़ी बातें करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परम पिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रच चाहिए टॉकी बनने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए तो बाबा को रथ तो चाहिए ना, उनको रथ तो चाहिए टॉकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परम धाम में रहने वाली हो, यहां आकर टॉकी बनती हो, बाप भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूं। बाबा को भी आना पड़ता है बच्चों से बात करने के लिए, बच्चों को अनुभव कराने के लिए, तो बाबा भी आके कि टॉकी बनते हैं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, ये है रूहानी पढ़ाई, वह होती है जिस्मानी पढ़ाई, वह अपने को शरीर समझते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते, दुनिया में कोई कितना भी कहे आत्मा पाठ बजाती, लेकिन मैं आत्मा कर्म करती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, ये तो कोई नहीं कहते ना। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा कानों द्वारा सुनती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप ही पतित पावन, और वही आकर के समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ, तुम्हारे मिशन मैं गर्भ में नहीं आता। बाबा कोई हमारे तो जन्म नहीं लेते हैं, वह तो आते हैं शरीर का आधार लेते हैं, तुम्हारे मिशन मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ये रथ है, इसको माता भी कहा जाता है। आप ब्रह्मा बाबा को बाबा क्या कहते हैं, ये तुम्हारी माता है ना, माता कईयों को पूछते ना तुम्हारी माँ कितनी है, कौन बताएगा है? आज हमारी क्लास में देखो इंटरनेशनल युवा ग्रुप है, ज्ञान सरोवर में यूथ ग्रुप की रिट्रीट चल रही है, तो आज ये पांडव भवन ओम शांति भवन में आए, हाथ तो खड़ा करो यूथ ग्रुप, हाथ खड़ा करो, इनके लिए ताली बजाओ, जोर से बजाओ ना। बाबा बच्चों को यूथ को देखते थे तो बाबा को बहुत नशा चढ़ता था, बाबा कहते थे देखो ये ऐसी यूथ हैं जो बाप का नाम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, एक्टिव भी हैं, क्रिएटिव भी हैं और सेवा भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यूथ में से बताएं आपको कितनी माँ है, हैं? पहले बताओ शिव बाबा माँ, दूसरा ब्रह्मा बाबा माँ, तीसरा मम्मा, चौथा चौथा दादी जानकी, बोलो ना दादी जानकी ने यूथ ग्रुप को कितनी पालना दी है, चौथा दादी जानकी, और पांचवा ड्रामा, पक्का है ड्रामा, अच्छा ठीक है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ, तुम्हारी मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं उनमें प्रवेश करता हूँ। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ये रथ है, इनको माता भी कहा जाता है, सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, तो ये है सबसे बड़ी नदी, कलकत्ता में लिखाते ना सबसे बड़ी नदी विशाल है, और वो जाकर के कैसे सागर में मिलती हैं, तो बाबा कहते सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये ब्रह्मा है। पानी की तो बात ही नहीं है, वह है महानदी अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी, तो बाप आत्मा को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, जैसे तुम बात करते हो ऐसे मैं भी बात करता। साकार में बाबा बच्चों से बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें करते थे, बाबा बच्चों के साथ खेलते भी थे, बाबा बच्चों को घुमाते भी थे, बाबा दृष्टि भी देते थे। तो उस समय तो बाहर वाले को थोड़ी मालूम पड़ेगा कि हम शिव बाबा से और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिल रहे हैं, तो इतना सुंदर वो नजारा होता था कि जब साकार बाबा के बीच में तन में बाबा बैठ करके दोनों मिल करके बच्चों को इतना प्यार करते थे। तो बाबा हमेशा कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही मिलता हूँ, अपने बच्चों से ही बात करता हूँ, अपने बच्चों से ही खेलता हूँ, और बाहर वाले से बात ही नहीं करते, वो तो समझेंगे नहीं। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, जैसे तुम बात करते हो वैसे मैं भी बात करता हूँ। मेरा पाठ तो सबसे पिछाड़ी का है, तुम शुरू से आते हो पाठ बजाने के लिए और बाबा आते सबसे लास्ट में। अंतर बच्चों का पाठ शुरू से लेकर अंत तक और बाबा का पाठ है सबसे लास्ट, मेरा पाठ सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन सिवाय ईश्वर के और कोई कह न सके। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना, बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ, मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ, मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, बीज रूप हूँ, इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। बाबा अपना परिचय क्या दे रहे हैं, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, सत्य हूँ, चेतन हूँ, आनंद हूँ, चैतन्य हूँ, और इस झाड़ की नॉलेज को भी बाबा देते हैं। इस सृष्टि चक्र अथवा इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है, ये फिरता ही रहता है। चक्र तो फिरता ही रहेगा ना, चक्र मीन्स फिरना, चक्कर ऐसा नहीं कि बंद करके रख दो, चक्कर तो फिरता ही रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा तो घंटे दो घंटे का चलता है, और ये ड्रामा ये रील 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है, पूरा 5000 वर्ष का। और जैसे ही टाइम पास होता जाता है उतने सेकंड, उतने मिनट, घंटे कम होता जाता है। तुम जानते हो पहले हम देवी देवता थे, आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। ये सारा राज बुद्धि में है ना, बाबा फिर पक्का कराते हैं कि इस राज को बुद्धि में घुमाते रहना है, चक्कर घुमाते रहना है, पहले हम क्या थे फिर क्या बने। तो बाबा कहते हैं ये सारा राज बुद्धि में है ना, तो ये सिमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू शुरू में पाठ बजाने आए, नशा चला रहे क्या, शुरू शुरू में हम ही पाठ बजाने आए। हम सूर्य देवी देवता थे, 1250 वर्ष राज्य किया, कोई कम बात नहीं है। आज की भी दुनिया में हिस्ट्री में क्या करते हैं, फलाना राज्य आया 50 वर्ष किया, 100 वर्ष, 100 वर्ष तो कोई मुश्किल से, 20-30 वर्ष तक राज्य किया। और हमने कल कितना वर्ष राज्य किया, 1250 वर्ष। हम शुरू शुरू में पाठ बजाने आए, हम सो देवी देवता थे, हमने ही 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता है ना, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। तुम बच्चे समझते हो हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके, कहां सतयुग की स्टार्टिंग, कहां कलयुग की एंड। तो बाबा कहते अगर ये हिसाब निकालें तो निकाल सकते हैं। आप जैसे युवा में कई भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एक बार क्या हुआ, बाबा ने ऐसे कहा ना, तो एक बच्चे ने क्या किया, वो सारा हिसाब निकाला कि पूरे क्लब के अंदर कितने वर्ष कितने महीने कितने, वो बाबा को दिखाने लगा। बाबा ने कहा क्या किया तुमने, टाइम वेस्ट किया ना। बाबा ये नहीं कहते कि तू, बाबा तो अप्रोक्सीमेट बताते, बाबा ये नहीं कहते इतना एनर्जी इतना टाइम इतना समय वेस्ट कर दिया। तो बाबा कहते हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। बाबा एक तरफ अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि कितना समय हमने पास कर लिया है, तो आज बाबा बता रहे हैं। फिर पांच पचासी वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है, हर एक चीज सतो पर धाम, हर एक चीज की स्टेजेस होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि हर एक चीज सतो पर धाम, सतो रजोत्तम होती है, पुरानी जरूर होती है। ये फिर है बेहद की बात। बच्चा जन्म लेगा फिर बड़ा होगा, लास्ट में बुरा हो जाता है। कोई भी चीज है तो लास्ट में पुरानी तो होती है ना। तो बाबा कहते हैं ये है फिर बेहद की बात। ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। सब तो एक जैसे नहीं होते, बाबा को ये भी पता है। बच्चों को सबको एक जैसा बाबा समझा रहे, लेकिन समझने वाले तो कोई अच्छी तरह समझते हैं कोई कम समझते हैं। तो बाबा को कहना पड़ता है सब तो एक जैसे नहीं होते, जो भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे बड़ा सहज, चक्र का ज्ञान देना एकदम। चक्र का कैसे हम बता सकते हैं, बाबा कहते हैं कितना सहज है। ड्रामा और झांक दोनों मुख्य चित्र है। बाबा के टाइम पर थोड़े ही चित्र थे, एक त्रिमूर्ति था, एक सृष्टि चक्र था और एक कल्प वृक्ष था। तो अभी तो कितने चित्र बना दिए, बनाते ही जाते हैं। पता नहीं अभी भी बैठे बैठे क्या क्या चित्र बनाते रहते। बाबा के टाइम पर ये तीन चार मुख्य चित्र थे। तो बाबा कहते थे इस भी अच्छी तरह समझाओ। ड्रामा और झांक दोनों मुख्य चित्र हैं। कल्प वृक्ष नाम है ना, कल्प की आयु कितने वर्ष है ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, कोई क्या कहेगा और कोई क्या कहेगा, वो तो लाखों अरबों वर्ष कह देते ना सृष्टि की आयु। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा, ये भी समझ गए वो क्या बता रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और एक है ईश्वर मत को भी समझा है, कितना फर्क है। बाबा के टाइम पर एक किताब निकाली थी छोटी सी, मनुष्य मत और ईश्वर मत में अंतर, छोटी सी किताब थी। वो सबको देते थे, लोग खुशी से उसको स्वीकार करते थे। तो बाबा कहते हैं अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वर मत को भी समझा है, कितना फर्क है। ईश्वर मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े, और कोई की मत से और दैवी मत व मनुष्य मत से वापिस जा नहीं सकते। दैवी मत से तुम उतरते भी हो क्योंकि कला कम होती जाती है, आश्री मत से तो उतरते हो, आश्री मत से तो गिरते जाते हैं और दैवी मत से धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। परंतु दैवी मत में सुख है, आश्री मत में दुख है। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई, ईश्वर मत और दैवी मत दोनों बाप ही देते हैं, दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं, आप बताओ बाबा कितनी दूर से आते, कौन बताएगा, बाबा दूर से आते या आप विदेशी दूर से आते। बाबा इतने दूर से आते एक सेकंड में, और आपको कितना टाइम लग जाता, अभी तो फैसिलिटीज हैं जल्दी पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं, मनुष्य कमाने के लिए वहाँ जाते हैं, जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते। भारत से भी कई विदेशों में गए, मेहनत करते हैं, कमा लेते हैं, फिर सोचते हैं अपने देश में जाएं, अपने गांव में जाएं और अपने परिवार में जाएं, उनको जाकर के हमें इतना कमाया उनसे दे। तो बाबा कहते हैं, फिर बाप भी कहते मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जब बहुत धन इकट्ठा होता है फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गवा दे। बाबा पूछते हैं ना बच्चों से, कितना खजाना दिया था, क्या किया, और बच्चे भी इतने हैं, खा पी करके मौज कर ले, फिर अपने पे दोष नहीं देंगे, क्योंकि बाबा आपके तो मंदिर बनाए हैं। बड़े क्लेवर हैं बच्चे, बाबा से ज्यादा क्लेवर है बोलने में, तो क्या बताते, तो बाबा को पता है सब खत्म कर दिया है। तो बाबा कहते हैं, वह सब तुमने गवा दिया है, तुमसे ही तो बात करता हूँ, जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है, 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना? कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने ही वर्षा दिया था। बाबा इसी एक पॉइंट से बच्चों के नशे को जान जाते थे और उनके निश्चय को जान जाते थे। बाबा पूछते थे, पहले कभी मिले हो? जो नया होता था वो तो कहेगा, बाबा हाँ हाँ मिला तो हूँ। अच्छा, सोचता ही रहेगा। जो उनको पक्का निश्चय कहेगा, हाँ बाबा मिले हैं, और उनके एक्सप्रेशन, उनके भाव को देख करके बाबा समझ आते थे कि इसको पक्का निश्चय है। आपने वर्षा दिया था, अब तुमको स्मृति आई है कि बरोबर बेहद की बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा आपसे ही तो नई दुनिया की राजाई लिया का वर्षा लिया था। अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो। अब बच्चे क्या कह रहे, बाबा आपसे ही तो हमने बेहद की नई दुनिया का वर्षा लिया था। तो बाबा कहते, अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा, माया के भूत ने हमको हरा दिया है। बाबा को ये नहीं अच्छा लगता बच्चे कहे, बाबा हमसे आपसे वर्षा ले रहे हैं, माया हमसे क्या करते है। ऐसे नहीं कहो बाबा, माया के भूत ने हमको हरा दिया, देह भान के बाद ही तुम माया से हारते हो। माया से हारने का साधन क्या है? देह भान, देह अभिमान, लोभ किया, रिश्वत खाई, लालच की बात और है। अब ये दूसरी बात सुनो, लोग करते हैं रिश्वत खाते, बाबा जानते हैं लोग के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। अब इसमें दो राज बता रहे हैं बाबा। कई इतने बाबा के बच्चे हैं जो समझते लोभ में क्या करते, उनको होता लोभ। वो ऐसे वंडरफुल बच्चे हैं बाबा को, जो आजकल भी दादियों को बोलते हैं कि हम ये काम करेंगे ना हमको बहुत पैसा मिलेगा, हम इतना पैसा ईश्वर सेवा में लगाएंगे। बाबा समझ आते थे, दादियां भी समझ आती थी कि इनकी बुद्धि माया की तरफ है। बाबा कहते थे, केवल शरीर निर्वाह अर्थ, ईश्वर सेवा अर्थ, जितना चाहिए उतना करो, बाकी लोभ के चक्कर में मत जाओ। लोभ के चक्कर में गए तो एक ना एक दिन तो पकड़े जाते हैं ना, तो वो भी बाबा ने इसमें राज बताया है। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, लेकिन एक साधारण है, बहुत अच्छी तरह चलता है, उसका पेट पूजा अच्छी होती है, लेकिन जो ऐसे लोभी होते हैं वो कहेंगे कैसे हम अपने को चलाएंगे। बाबा कहते करके तो देखो, फंसते जाते बाद में निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो बाबा कहते हैं, भय खाओ परंतु कहां फंस नहीं मरना। बाबा ने उनको देखो, एक तरह लोभी सुनता नहीं है, बाबा कहते भूल करके देखो, फिर क्या करना, फंस नहीं जाना। लोभी को कितना समझाएंगे, वो 10 तरीके बताएगा, नहीं नहीं ऐसा करने से ऐसा होगा, ये कंपनी है, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, इस कंपनी से मेरे को डबल ट्रिपल मिलेगा। आज भी ऐसे उदाहरण है, कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी वाला लेके भाग गया, फिर आएंगे बाबा से पूछो ये क्यों क्या करें, अरे जब करते समय बाबा से पूछा ना, तो बाबा कहते इन बातों में कभी नहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं भल खाओ परंतु कहां फस नहीं मरना। अब बाबा का शब्द लिखा कहां फस नहीं मरना, मरना मीन्स उसमें इतना फस जाते हैं सब बातों से हटना पड़ता है। फिर तुमको भी दुख होगा, पैसा मिलेगा खुश हो जाएगा, कहां पुलिस पकड़ लिया ले लो पैसा भल, कहीं पुलिस ले गई तो क्या होगा, जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, मैं उनका फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। कई बच्चे ऐसे होते, मैंने बाबा को सुनाया था, बाबा तो मना किया लेकिन मन मन से कर लिया, फिर बाबा कहते जो किया उसका फल भोगो, मैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं ना। तो बाबा कहते मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं ना, वहां तो सजाएं जेल आदि होती नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला है 21 जन्म वैसे फिर लेंगे, सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा साहूकार प्रजा, परंतु वहां दुख होता नहीं, स्टेटस होंगे लेकिन गरीब अमीर भल होंगे लेकिन कोई भी दुखी नहीं होगा। ये बात गारंटी करते हैं सब एक समान तो बन ना सके, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में तो सब चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, हम फिर उतरते हैं, स्मृति में आया ना बाबा याद दिलाए कैसे चढ़े और कैसे फिर नीचे आए, तो बाबा कहते स्मृति में आया ना, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है, यहाँ बाप भी स्मृति जलाते हैं, ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा न सके। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भाव, इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। मन मना भाव अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र, माया जीते जगत जीत। माया पांच विकार को कहा जाता है, रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है, पांच विकार स्त्री में और पांच विकार पुरुष में, इसी गधा अर्थात टट्टू बन जाते। फिर बाबा ने राज बताया है कि रावण के सिर पे गधे का सिर दिखाते हैं ना, वो क्यों दिखाते हैं, बाबा के विकारों से गधे जैसी एक्टिविटी हो जाती है, टट्टू जैसे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे गधा अथवा टट्टू बन जाते हैं, इसलिए ऊपर में गधे का शीश दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान बिना हम भी तो ऐसे थे, कुछ भी समझ नहीं किया क्या क्या एक्टिविटी करते थे, बाप कितना रमणीक रीति बैठ पढ़ाते, ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं बताएंगे, वो बना देंगे गधे का सिर लगा देंगे, ये थोड़ी बताएंगे क्यों है। बाबा ने बताया ना कैसे बताते कि तुम क्या से क्या थे क्या बन गए, बाप कितना रमणीक रीति से बैठ पढ़ाते, वह सुप्रीम टीचर, उनसे हम जो पढ़ते हैं वह फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए, बोलो बाप ने हमको ये समझाया है। अब किसी को भी समझाते हैं ना तो उनको ये नहीं बोलो, बोलते जाते, कई बार ज्ञान सुनाते ना सुनाते सुनाते रहते, लेकिन ये उनको नहीं बताते कि जो हम सुना रहे हैं ये हमको किसने सुनाया है, इस सुनाएंगे तो उनको थोड़ा असर पड़ेगा, नहीं तो वो क्या बोलते हैं बहुत अच्छा सुनाया, बहस भी करते ना। तो बाबा कहते हैं बोलो बाप ने हमको ये समझाया है, अब मानो या ना मानो। तो कितना न्यारा हो जाते हैं, कितना कोई बहस करे उनको जब बोलेंगे बाबा ने समझाया, सुनो ना सुनो, न मानना तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो। बोलो बाप ने हमको ये समझाया है, अब मानो नहीं मानो, ये बेहद का बाप तो है ना, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो हम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं, ये दुनिया की हालत क्या है, बाहरी सुंदर है अंदर क्या है, दुख ही दुख है, अशांति है। तो बाबा की तभी तुम समझते हो हम खिचड़ी की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा तो कोई समझ ही ना सके, किसी को कहो तुम खिचड़ी की दुनिया में, वो लड़ पड़ेगा, कहेगा इतना साइंस है, इतना सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं दूसरा तो कोई समझ ना सके, वहां हम बहिष्ट स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहाँ नरक में कितने दुखी हैं। इसको नरक कहो या विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया छींचे। कितनी गंदी, जब कोई गंदी चीज होती ना, बच्चों को माँ बाप क्या करते हैं, किसी चीज को हाथ नहीं लगाने देना होता ना, कहेंगे छींची है, गंदी है, छींची है, छींची मीन्स अच्छी नहीं है। तो बाबा कहती है पुरानी दुनिया कितनी छींची है, अभी तुम फील करते हो कहाँ सतयुग स्वर्ग और कहाँ कलयुग नरक। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, त्रेता को नहीं कहेंगे, त्रेता को वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहेंगे, सतयुग को कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को कितनी खुशी होती है, विष्ठा के कीड़ों को भ्रमण भोंदू कर आप समान बनाती हैं। तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, बाबा ने बच्चों को कहाँ से उठाया, कितनी गंदी दुनिया में कहाँ कहाँ पड़े थे। तो बाबा कहते तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, मैं आकर भूभू कर तुमको किचड़े से अर्थात कीड़े से अशूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कितना ऊंच बना देते हैं, डबल सिरताज बना देते हैं, तो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद कम बाप समझाने तो बहुत सहज देते हैं, इतना सहज रीति से बताते हैं कि ये पुरुषार्थ करो और तुम क्या से क्या बन जाएंगे। दिल से लगता भी है, बाबा सच सच कहते हैं, इस बेहद की इस समय सारी माया की दुबन में फंसे हुए। बच्चों को फील भी होता है कि कैसे बाबा बता रहे हैं कि सारी दुनिया की हालत क्या है। तो बाबा कहते दिल से लगता भी है, बाबा सच सच कहते भी हैं, इस समय सारी माया की दुबन में फंसे हुए हैं, बाहर का कितना शोर है। बाबा समझाते हैं हम तुमको दुबई से आकर बचाते, दुबई मीन्स कीचड़ या एकदम कीचड़ा होता है ना, हाथ लगाओ तो नीचे से नीचे जाते जाएंगे। तो बाबा कहते मैं दुबई से निकाल करके बाहर निकालता हूँ, स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम तो सुना है ना, अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ ये चित्र है। स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में भल रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु ये ज्ञान कुछ नहीं था। भक्ति बहुत किया, अच्छा सब मंदिरों में गए, क्या क्या किया, अच्छा युवा ग्रुप में से बताओ भक्ति किया है, जिन्होंने किया है कहाँ की होगी, विदेश में रहते हैं कहाँ की होगी, जिन्होंने युवा ग्रुप में से जिन्होंने भक्ति की बात खड़ा करो, थोड़ी है दो चार ही है, थोड़ी सी भक्ति की होगी, अभी युवा तो है, इतनी एज है, छोटी एज है, इतनी थोड़ी एज में थोड़ी भक्ति की होगी, कभी मस्जिद चले गए, कभी मंदिर चले गए, कभी चर्च में चले गए होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन पूर्व जन्म में बहुत किए है, पूर्व जन्म में तो बहुत भक्ति की है, इसलिए तो आए हो ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में वो रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु ये ज्ञान कुछ भी नहीं था। अभी तुम समझते हो भारत में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनका राज्य कब था ये किसको पता नहीं है। देवी देवता धर्म के बदले अब हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, बोला हम भिखारी असुर। बाबा के टाइम पर हिंदू महासभा का एक प्रेसिडेंट आया तो बाबा के सामने उसने जो बात किया तो बाबा वो बता रहे हैं, बोला हम भिखारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाएंगे? हमने कहा अच्छा आओ तो हम आपको देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है वह तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला दादाजी फुर्सती कहाँ है? बाबा से बातें किया, इतनी बातें किया कि दुनिया की हालत क्या हो चुकी है, धर्म की हालत क्या हो चुकी है, सब बाबा को बता रहे हैं। बाबा ने कहा अच्छा, बाबा ने उसको आदत दिया अच्छा तो बैठो हम आपको बताते हैं कैसे देवता धर्म की स्थापना हो सकती है। फिर बाबा सुनना तो है नहीं, बाबा को कहते बाबा फुर्सत ही कहाँ है? बोला दादाजी फुर्सत कहाँ है? फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते तो फुर्सत नहीं, सुनो नहीं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो देवता कैसे बनेंगे? ये पढ़ाई है ना, बिचारे की तकदीर में ही नहीं था, आया कितना बड़ा भाग्य, बाबा से मिला है, कोई कम बात थोड़ी है। अभी भी कई बच्चे तरसते हमने बाबा को क्यों नहीं देखा, हमने क्यों नहीं, बाबा से मिला, बाबा से बातचीत किया, लेकिन उसके भाग्य में नहीं था। तो बाबा कहते बिचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया ऐसे नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा, नहीं ऐसे ही चला गया। बाबा से मिला, बाबा के दर्शन किए, बातचीत किया, लेकिन ज्ञान तो नहीं सुना, न प्रजा में आएगा, हाँ द्वापर में जाके थोड़ा बहुत कुछ ऊंच पद पा ले वो बात अलग है, कोई प्रजा में आएगा नहीं, ऐसे ही चला आया था। सुना था कि यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सचिव में तो आ न सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएगा, अपने धर्म में आएगा और वहाँ ऊंच पद भी पा सकता है। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई न कोई भूल कराती ही रहती है, कभी कोई उल्टा सुलटा पाप हो तो बाप को सच्ची दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में तो पाप होते ही रहते हैं, कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, ये किसने कहा? आत्मा कहती है बाप के आगे या देवताओं के आगे। अज्ञानी लोग जाते हैं देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो गाते रहते ना, हम नीच पापी कपटी बोलते रहते ना, तो बाबा के सामने शिव के मंदिर में देवताओं के मंदिर में गाते हैं। आत्मा गाती बाप के आगे या देवताओं के आगे? अभी तुम तो फील करते हो कि बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे, रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो, इस जन्म का वर्णन तो कर सकते हो ना? बाबा पर कई बार बताते हैं पूर्व जन्मों की तो बातें ना कोई बता सकता है, इस जन्म से तो 5 वर्ष की आयु से भी याद रहता है कि हमने क्या किया। तो बाबा कहते इस जन्म की तो वर्णन जरूर कर सकते हो, ये सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा चोरी किया, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती। बाबा कहते मारा चोरी किया ये तो फटाफट लिख देंगे, हमने बचपन में ये किया वो किया, वो तो कॉमन सी बात है, बच्चे होते हैं कुछ न कुछ कर देते हैं, लेकिन बाबा मेन जो कहते हैं पवित्रता की बात पे कहते हैं इस चरण का वर्णन कर सकते हो, वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे सुनाने आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा चोरी किया, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती, ये तो फटाफट बता देंगे। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है, फिर कहेंगे बाबा क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो नहीं बताते। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी कैसे छूटेगी, फिर अंदर दिल खाती रहेगी, बाप को याद कर नहीं सकेंगे, मानो बहुत बड़ी भूल की है, नहीं बताते हम तो मन ही मन करता है, कहेंगे बाबा तो सब जानता है, बाबा कहते मैं जान के क्या करूंगा, खुद ही खुद परेशान होते ना। तो बाबा कहते हैं बाप को याद नहीं कर सकेंगे, सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। कितनी बड़ी दवा बाबा देते हैं, एक इंजेक्शन देते हैं बस, मन मना भाव से सब बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सज्जन को बताने से हल्का हो जाता है, कोई कोई आप ही लिख देते हैं, बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, पाप आत्मा की दुनिया में पाप आत्मा ही बने हैं। अब बाप कहते हैं, बच्ची तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। एक बहुत गहरी पॉइंट है, ये इतनी गहरी पॉइंट है, क्या होता है बाहर वाले लोग जो अज्ञानी हैं, कुछ ऐसे हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, वो ब्राह्मणों को तो सीधे साधे होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा बहला कर फुसला कर ऐसी ऐसी बातें करके कोई ना कोई बातों में क्या करते, लेन देन में डाल देते। जब लेन देन में लग जाते हैं धोखा होता है, फिर पछताते हैं, लेन देन के टाइम बताएंगे भी नहीं। और दूसरी बात, दादी हमेशा याद कराती थी कि ब्राह्मणों में भी पैसे का लेन देन कभी नहीं करना। इतने उदाहरण है हमारे पास, आते हैं बहन जी हमने उसको इतना दिया, हमने विश्वास से दिया, अभी वो देता नहीं है, जब दिया तब तो बताते नहीं, तब आपस में बातचीत करते कि किसको बताना नहीं, लेकिन जब चला जाता है फिर आते हैं, ये करो वो करो केस करो। इसलिए बाबा कहते ना बाहर वाले से ना ब्राह्मणों में पैसे का लेन देन, ज्ञान का लेन देन करो लेकिन पैसे का लेन देन कभी नहीं करना है। बुद्धि फिर उसमें फंस जाती है, इस बात का सबको बहुत ध्यान रखना है। बाबा हमेशा ध्यान खिंचवाते थे, प्यारी दादी भी इस बात का ध्यान खिंचवाती थी, तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें पुण्य पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। सच्चा सतगुरु अकाल मूर्त है बाप, वह कभी पुनः जन्म में नहीं आते हैं, उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा का ये तख्त है, शोभता भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ ब्रिकुटी में देते हैं, तिलक लगाते तो यहाँ पर ही देते ना, तो बाबा कहते तिलक भी अगर साइड में लगा दो तो कैसा लगेगा, तिलक भी यहाँ देते है ना, असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे, अभी तुमको अपने को आप ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो, जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। क्लियर बता दिया कि जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतना बड़ा महाराजा बनेंगे, बड़ा महाराजा बनेंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़नी है। अभी भी क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते कहेंगे थोड़ा ये भी पढ़ लो, भल पढ़ लो लेकिन सेवा अर्थ पढ़ना है, पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़नी है, तो इतना ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। फिर बाबा को पता था, बैठे हैं बाबा के सामने, बुद्धि योग इधर गया उधर गया, कईयों को तो अच्छा बाबा को ही देखते रहते थे, कोई बाबा के सामने बैठे उधर देखा इधर देखा, कोई आया उसको देख लिया, तो ऐसे भी करते थे, तो बाबा को कहना पड़ता है कोई कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, चार्ट लिखते ना बाबा को, लिखते बाबा 10 मिनट याद किया, कोई 15 मिनट लिखते हैं, जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते। उस समय तो ऐसा था ना कि रियल याद जो है एकदम ऐसे, बाबा कहते 15 मिनट से याद से नहीं है, भले 2 घंटा बैठे रहे, सारे दिन में 4 घंटा बैठे रहे, लेकिन उसके अंदर स्थिति कैसे रही वो बाबा बता रहे हैं। 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते हैं, बुद्धि इधर उधर भागती है, अगर सब एक रस हो जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितना मीठी मीठी लवली बातें सुनाते, ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं सुनाते, बाप कितना मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं, ऐसे तो कोई गुरु ने सिखाया ही नहीं है कि बाबा से कैसे बात करनी है, बाबा बच्चों से कैसे बात करते, ये तो कोई नहीं सिखाते ना, वो तो केवल गीत गाते हैं, सिर्फ सिमरन करते, बाकी सिखाते तो नहीं है ना। तो बाबा कहते ऐसी तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया, गुरु से सिर्फ ये थोड़ी एक सीखेगा, गुरु से कोई एक थोड़ी सीखेगा, गुरु से सिर्फ एक थोड़ी सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखेंगे। सतगुरु से तुम कितना सीखते हो, यह है माया को वश करने का मंत्र। कौन सा? मन मना भाव। माया पांच विकारों को कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इनके पास बहुत संपत्ति है, लक्ष्मी नारायण को कभी मात पिता नहीं कहेंगे। भल देवताओं के पास गाते रहते तुम मात पिता बालक थे, बाबा के थे, उनको वास्तव में मात पिता तो उनके बच्चे कहेंगे ना, सारी दुनिया के तो नहीं कहेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को कभी मात पिता नहीं कहेंगे। आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं। जगत अम्बा आदिदेव आदि देवी को कहेंगे, जगत पिता जगत माता कहेंगे, लेकिन इनको नहीं कहेंगे। आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते इनको नहीं, ये स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते, लक्ष्मी के पास आशाएं नहीं, लक्ष्मी के पास जाते धन के लिए, धन दौलत मांगते, उसके पास अपनी आशाएं नहीं ले जाएंगे। जगत अम्बा के पास तो कितनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जाते, आशाएं लेके जाते। तो बाबा कहते हैं अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं, लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई? अब किसको कहेंगे, लक्ष्मी को कहेंगे या जगत अम्बा को? बड़ी कौन हुई बताओ? भल कहेंगे जगत अम्बा, भल वो जाके नए रोल में लक्ष्मी बनती है। इस समय के अनुसार भक्ति के हिसाब से तो बड़ी कौन है? जगत अम्बा हुई ना। तो जगत अम्बा लक्ष्मी बनेगी, उस समय जरूरत ही नहीं है, लेकिन बड़ी कहेंगे जगत अम्बा को। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई? ये किसको पता ही नहीं है कि अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। देखो ना, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। बाबा माँ जो है उसे कितना मिलता है, कितनी प्राप्ति होती है, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं के दुख को माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है। माताओं ने कितने दुख सहन किए, कितनी हालत हो जाती, क्या क्या हुआ है द्वापर से लेकर के, तो फिर बाबा आकर के माताओं को उठाते हैं। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाघ कहती है कि बाघ को याद करो तो पावन बन जाएंगे, चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ, गॉड फादर के तुम स्टूडेंट। कितनी बड़ी बात कि गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो, कलप पहले भी बने हो और अब फिर भी बने हो, अब भी वही एम एंड ऑब्जेक्ट है। कलप पहले हम बाबा के बच्चे भी बने, स्टूडेंट भी बने, और हमारा एम ऑब्जेक्ट भी कलप पहले भी वही था। कलप पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम एंड ऑब्जेक्ट है। ये है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। कौन सी कथा है? सत्य। ये है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपनी बीमारी, पहला अपनी बीमारी सर्जन से कभी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। अपनी बीमारी सर्जन से कभी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। दूसरा स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। वरदान इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। पहले स्व का कल्याण, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्मा तो क्या हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं? इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाती है। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। उन पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। आप सुनेंगे आज का सोमान, फिर आवेग इशारे सुनेंगे। आज का सोमान है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की हेडिंग ये चल रहा है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। सोमान है मैं आत्मा बाप समान परफेक्ट हूँ। सोमान मैं आत्मा बाप समान परफेक्ट हूँ। योग अभ्यास मैं आत्मा सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। बाप समान संपूर्ण परफेक्ट हूँ। फ्लोलेस हूँ। संपूर्ण सतोप्रधान हूँ। मुझ आत्मा की संपूर्णता के वाइब्रेशन विश्व से डिफेक्ट को समाप्त कर रहे हैं। धारणा है सर्व शक्तियों को इमर्ज करना। चिंतन सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा की निशानियां क्या होंगे। सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा की निशानियां क्या होंगी। आज का व्यक्ति इशारा सुनेंगे। आज 28 तारीख आज का व्यक्ति इशारा संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। स्वयं से भी संतुष्ट औरों से भी संतुष्ट रहो। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। स्वयं से भी संतुष्ट औरों से भी संतुष्ट रहो। जो पाठ मिला है उसमें ही संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति। डबल विजय का प्रोग्राम है आज का। अच्छा, योग के बाद सभी डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, उनको आज का सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। यूथ ग्रुप को तो उनके सारे दिन का प्रोग्राम पहले से पता ही है, लेकिन बाकी जो विदेशी ठहरे हैं उनको सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं। अभी एक बात बतानी है कि कल से आप सभी एक अपने देश का समाचार सुन रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से भी उनका बहुत सुंदर संबंध रहा है, बहनें भी मिलती रही हैं और वो अपने स्वभाव के बहुत अच्छे, बहुत ही निर्माणचित, उस बहुत विशेषताएं रही, देश के लिए बहुत कुछ किया है। और 92 इयर्स की एज में उन्होंने परसों ही अपना भौतिक शरीर त्यागा। प्रधानमंत्री ने भी उनके लिए बहुत सुंदर रीति से अपने विचार रखे हैं और 7 दिन का राजकीय शोक रखा है। ऐसी आत्मा के लिए पहली बार है किसी के लिए 7 दिन का राजकीय शोक रहे। वैसे तो हम सभी ने योग के द्वारा उनको साकाश दिया उस आत्मा को, क्योंकि ऐसी आत्मा जिन्होंने विशेष कार्य किए हैं वो भी कई कार्यों के अंदर सहयोगी रहे हैं, उनका भी पुण्य है। तो अभी हम जैसे योग में बैठेंगे वैसे उन आत्मा के प्रति भी योग में रहकर के श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे और उनको आज सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। ओम शांति।